श्लोक कहना है
जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते शाश्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशकारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूप शारदात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साधयितं सावधूतं परिजन सहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सुत उवाच इति भीता प्रजा दोहात् सर्वधर्म विविदसया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देव व्रतोपतत् श्रुत उवाच इति भीतः प्रजा दोहात् सर्वधर्म विविदसया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देव व्रतोपतत् हरे कृष्ण बोलिए सभी को
Thank you.
उवाच श्री शुक गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार हिता डरा हुआ प्रजा दोहात प्रजा के मारे जाने से सर्व समस्त धर्म धर्म के कार्य विविचया जानने के लिए तथा तत्पश्चात विमसनम दूरस्थल प्रागात चले गए जत्र जहाँ देवव्रत देवव्रत भीष्म अपतत गिरे हुए थे। अनुवाद और तात्पर्य मैं 10 श्लोक पढ़ूंगा, एक का केवल तात्पर्य पढ़ देता हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे लोगों का वध करने के कारण भयभीत महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मल्लासन होकर सरसैया पर लेटे थे। तात्पर्य इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी राजा युधिष्ठिर को भीष्मदेव वृत्ति विषय कर्तव्यों के विषय में उपदेश देंगे। भीष्मदेव भी इस मर्त लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे हुए थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालिक श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। श्री प्रभुपाद की तो इसके इस अध्याय की भूमिका में दो चार वाक्य। इसके पूर्व के अध्याय में जैसा कि आप सुन चुके हैं भगवान द्वारका जाने के लिए रथारूढ़ थे। उस समय अश्वत्थामा ने छह छोड़ा और श्री भगवान उन ब्रह्मास्त्रों से पांडवों की रक्षा किए और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु परीक्षित के लिए। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने उनको उस दिन की यात्रा रोक दिया। आज खड़ मंदिर हो गया, उतरिए दूसरे दिन देखा जाएगा। और उसी क्रम में महाराज युधिष्ठिर के कहने से पहले महारानी कुंती अपने भतीजे के प्रभाव को झेल नहीं पाई, भगवान के रूप में स्तुति की। शकुंती ठाकुर लिखते हैं इस स्तुति के भूमिका में कि शायद मरे हुए लोगों के पिंडदान के समय अंत्येष्टि के समय जलदान के समय एक एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था। आठवां अध्याय के प्रारंभ में तो नाम लेकर सब लोग जलदान करते थे तो भीषण रोदन हो जाता था। एक एक व्यक्ति के गुणों का स्मरण करके सब रोने लगते थे। यहाँ तक कि अभी मनु के जब जलदान होता होगा तो क्या बीतता होगा पांडवों को, या गंधारी के पुत्रों को गंधारी के द्वारा जलदान कराने पर धृतराष्ट्र को क्या बीतता होगा। सौ सौ पुत्र खो चुके थे। उसी क्रम में सबका जलदान हुआ। चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि महारानी कुंती भी दुखी थी। सबके लोग मारे गए थे, कुंती का बेटा भी मारा गया था। तो कुंती युधिष्ठिर को एकांत में बुला कर कहे बेटा कर्ण के लिए भी जल दे दो। नहीं झेल पाई, सबके लिए जलदान हो रहा था तो अत्यंत रहस्य की बातें आज कह दी। क्यों कर्ण के लिए क्यों जलदान करें? तो बेटा वो तुम्हारा सहोदर है, अग्रज है। महाराज युधिष्ठिर पर तो वज्रपात हो गया। अग्रज है मतलब जैसे मैं तुमको गर्भ में धारण की तुम्हारे पहले कर्ण को अपने गर्भ में धारण की मुझसे जन्म लिया है, और जैसे देवताओं से तुम लोगों को प्राप्त की वैसे ही भगवान सूर्य से कल को प्राप्त। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर इतना दुखी हुए कि अपने जीवन में कभी माँ पर नाराज नहीं हुए थे, लेकिन आज ऐसा नाराज हुए कि केवल माँ के बहाने समस्त ऋषि समाज को श्राप दे दिए। आज के बाद स्त्रियों को छिपाने के लिए कोई बात नहीं रहेगी, कोई भी राष्ट्र की बात नहीं छिपा सकती है। श्राप दी तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शायद यही कारण है। वो श्रापित कुंती शुरू से जानती थी कि हमारा भतीजा भगवान है, लेकिन इस रहस्य को छिपा कर रखी थी, लेकिन श्रापित कुंती अब नहीं छिपा पाई। अब भगवान के चरणों में प्रणाम प्रारंभ किया, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। इसके साथ महारानी कुंती सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ नमस्कार को ही मानती है, अपने को अत्यंत दैन्य भाव में अयोग्य मानकर नमस्कार को ही प्रबल साधन मानती है। नमस्ते से प्रारंभ करती है और नमस्ते से अंत करती है। श्री कृष्ण कृष्ण विष्णु भाव निध्रुव अंत में नमस्ते है, दोनों नमस्ते के बीच में 26 श्लोक में स्तुति रखती है। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर कहे कि चलिए उतरिए रथ से, हो गया आज की यात्रा। फिर भी कुंती और माद्री कुंती और सुभद्रा उत्तरा से विदा लेकर भगवान पुनः तैयार हो गए। जब चलते हैं तो भगवान प्रेमणा राज्ञा निवारित सुत गोस्वामी कहते हैं प्रेम पूर्वक राजा ने रोक दिया, नहीं नहीं आज नहीं। तो रोक दिए तो ठीक है, रोक दिए उस दिन, अब दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो पांडव लोग जबरदस्ती थोड़े करेंगे कि आप जाइए जाइए, जा ही नहीं रहे हैं। और बाद में कानाफूसी हो रहा है पांडवों में, वहाँ उपस्थित महर्षि व्यास धौम्य आदि जा क्यों नहीं रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन तो बड़ा प्लान पूर्वक रथ पर बैठ गए, स्वस्ति वाचन भी हो गया, अब नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जब रुक गए तो महाराज युधिष्ठिर अब थोड़ा खाली मूड में, जब आदमी को बहुत झिमवारी आ जाता है, अचानक परिवार में समाज में कोई विशिष्ट व्यक्ति भी मर जाए, उसका शोक तो होता है, लेकिन अचानक उसके बेटे या किसी जिम्मेवार व्यक्ति को इतना काम बढ़ जाता है, उसका अंत्येष्टि करना है, दाह संस्कार करना है, भोज कराना है, ये कराना है, वो कराना, व्यस्त हो जाता है। और उसके बाद जब खाली टाइम होता है तब उसके अभाव का स्मरण होकर शोक होता है। उस समय जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन वो रो ही नहीं पाता, रोने का भी फुर्सत नहीं मिलता है व्यस्तता के कारण। जब बाद में सब बीत जाता है, सभी लोग चल जाते हैं भोज भाज होने के बाद, अरे मैं खुद अपना अनुभव कर रहा हूँ, पता नहीं और लोगों के साथ क्या होता होगा, अचानक महाराज श्री उपस्थित थे, 18-19 भक्त थे प्रीचिंग के लिए तैयारियां, गांव के सब भक्त थे, झारखंड में जा रहे थे, सबको खिला पिला कर स्वागत पूर्वक बढ़िया से सम्मान पूर्वक खेत पर गए। ऐसे ही सितंबर का महीना था, 19 सितंबर 1989, वो डेट भूलने वाला नहीं। अचानक आकाश की बिजली गिरी और हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, अचानक एकदम स्पॉट डेथ। जब कर रहे थे दीक्षित थे महाराज जी, उनको गौर गोविंद दास नाम रखे और बहुत भजन परायण थे, अचानक उनकी मृत्यु की जिम्मेवारी ऐसे हुई, गांव भर के लोग रो रहे थे, टोटल भक्त लोग सब लोग, और मुझे आंसू ही नहीं आ रहा था, मैं तो एक दूसरे स्थिति में पड़ गया। अब आगे क्या करना है, ये इतना भारी जिम्मेवारी आ गई, ऐसे ले जाना है बनारस ले जाना है ऐसे वैसे। बाद में मुझको पता चला कि पिताजी मर गए, बाद में, और सब लोग ले जाने के बाद सब कुछ के बाद, और फिर उसमें कैसे करना है जैसे जलाना वगैरह सब के बाद, और लास्ट में 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद भारी चिंता। रे हुआ 3 भाई और 2 बहन अविवाहिता, भाई एक है मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी कैसे आ गई, अब मुझे अफसोस होने लगा, चिंता होने लगा। फिर भी महाराज श्री बहुत प्रेम से समझाए, भगवान की इच्छा थी उसको स्वीकार करना चाहिए, सब हो जाता है। तो वैसे ही महाराज युधिष्ठिर जब शांति के मूड में हुए तो कहे, मैंने क्या किया, मैंने एक साधारण पद के लिए इतने लोगों का हत्या कराया, मेरे कारण गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, ये बेटा अभिमन्यु मेरे कारण मारा गया, मैं पदलुप्त कामी लंपट इतना दुखी हुए कि गीता वक्ता भी समझा नहीं पाया। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को मोह हुआ वो तो समझा दिए, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को जो शोक हुआ नहीं समझा पाए। व्यास धौम आदि सारे ऋषि थक गए, उनकी बात तो छोड़िए, कृष्ण थक गए। तो कहे कि अच्छा आप ऐसे नहीं समझेंगे तो 456 वर्ष के अनुभव लिए हुए भीष्म देव अभी पड़े हैं, भगवान की एक अद्भुत भंगिमा है, उनको युधिष्ठिर को उपदेश तो कराना एक अनुसंगिक कारण है, मुख्य कारण है कि अपने परम प्रिय भीष्म को जीवन के अंत में दर्शन देना है। इस रहस्य को कोई नहीं समझ रहा था, क्यों रुक गए वहाँ, ये तो पोल खुलेगा 9वां अध्याय के लास्ट में। सब लोग काना पूछ कर, अच्छा यही कारण थे रुकने का। अब भीष्म पितामह के पास जाना है, बहाना कर लिए, और अर्जुन अरे युधिष्ठिर महाराज के हृदय में शोक भी उत्पन्न वही कराए, सबके हृदय में वही है, प्रेरित करके उनको महाशोक में डाल दिए, कोई समझा ही नहीं पाया। तब तो भगवान कहते हैं चलिए भीष्म जी से पूछते हैं, अगर वो कह देंगे कि अनुचित हुआ है युद्ध में, समझाया गया कि क्षत्रियों का कर्तव्य है कुछ हिंसा होता ही है, तो महाराज युधिष्ठिर कर हिंसा करोड़ों वर्षों तक नरक में रहने पर भी मेरा प्रायश्चित नहीं हो सकता, मैं उस धर्म को स्वीकार ही नहीं करता जिसमें जीवों की हत्या हो, यह धर्म है। एकदम जो भी समझाने का कोशिश करता था उसको चुप कर देते थे, जिसमें बच्चे मारे जाए, स्त्रियां विधवा हैं, जिसमें ब्राह्मणों की हत्या हो, धर्म है, उस धर्म को मैं नहीं मानता। कौन धर्म? उस पुत्र युधिष्ठिर। अब उनके सामने कौन बात करेगा, सब चुप। तो कहे चलो भीष्म पितामह के पास। सूत गोस्वामी कहते हैं इति भीतः प्रजा दोहात् सर्व धर्म विविदशया ततो विनशनम प्रागत जत्र देवो प्रतो पतत। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहाँ सभी लोग मारे गए थे वो विनशनम स्थान है, मरने और विनाश का स्थान, वहाँ पर चले गए महाराज युधिष्ठिर। युद्ध स्थल पर गए जहाँ लोग एक दूसरे को मार कर आए थे, जहाँ लाश पटी हुई थी, और इस प्रकार प्रजा मारी गई थी, प्रजा के द्रोह की जहाँ अग्नि जली थी वहाँ एक एक लोग मारे गए थे, कई हजार कई लाख लोग मारे गए थे, वहाँ पर गए। किस लिए गए? कहते हैं सर्व धर्म विविदशया, अपने कर्तव्य को ज्ञान करने के लिए, धर्म की जानकारी के लिए, जिज्ञासा से गए, जानने के लिए गए कि हमारा क्या कर्तव्य है, मैंने उचित किया कि अनुचित किया, इसके लिए गए। और उस युद्ध स्थल में देवव्रत जहाँ गिरे हुए थे, पड़े हुए थे, तो वहाँ पर ये लोग गए। प्रभुपाद कुछ एडवांस लिख देते हैं, तात्पर्य में लिखे हैं कि उनके केवल युधिष्ठिर ही नहीं गए, दुनिया के जितने सिलेक्टेड विद्वान थे सब पहुंच गए। अब आप सुनेंगे कि परशुराम जी भी गए। जब परशुराम को शुद्ध गोस्वामी स्पेशल कहते हैं, सत शिष्य रेणुका सुत, अपने शिष्यों के साथ रेणुका सुत गए, सबका परिचय दिए हैं थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी कौन कौन आया था। तो उसमें आचार्यों का कहना है कि सौ शिष्यों रेणुका सुत, सब लोगों को एक एक नाम रख दिए, इसका मतलब इतने बड़े गुरु आचार्य महंत लोग अकेले थोड़े आए होंगे, कुछ चेलाचारी तो होंगे, लेकिन परशुराम को स्पेशल क्यों कह रहे हैं सौ शिष्यों रेणुका सुत? इस पर एक विशेष कारण है कि परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध प्रसिद्ध है, गुरु चेला में लड़ाई, घोर लड़ाई, एक स्त्री के कारण लड़ाई हो गई थी, काशी नरेश की बेटी के कारण। तो भीष्म पितामह काशी नरेश के तीन लड़कियों को पकड़ कर ला रहे थे हस्तिनापुर, वो एक्चुअली स्वयंवर में नहीं गए थे, वो गए थे मिथिला में, मिथिला नरेश से उनकी दोस्ती थी, उधर रुके थे। उनको सूचना भी नहीं था, विदेह राज्य में थे, वहाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं चलता था, कोई दुनिया का खबर नहीं, केवल अध्यात्म वातावरण था। तो वहाँ से निकले तो चले हस्तिनापुर के लिए, तो सोचे चलो काशी नरेश से मिल लेते हैं, वो भी मित्र था, रास्ते में है, मिल लेते हैं। काशी में आए तो देखते हैं कि हाँ तो बड़े बड़े राजा लोग जुटे हैं, बात क्या है, स्वयंवर सजा हुआ है। तो सारे राजा हंसने लगे कि अच्छा ब्रह्मचारी जी का भिक्षा हो गया क्या, भी व्यंग बोलने लगे। अब तो क्षत्रिय स्वभाव छिड़ गए, मैं अच्छा दिखाता हूँ कैसे ब्रह्मचारी विवाह करता है। और एक बाण में सारे राजाओं का मुकुट गिरा दिए, पहले तो श्रीहीन कर दिए और तीनों लड़कियों को पकड़े एकदम हाथ से रथ पर बिठा कर चल दिए। तो एक बीच में कहने लगी कि मैं तो अपना मन सालू को दे चुकी हूँ, अच्छा ठीक है छोड़ दिए। लेकिन वह सालू के पास गई तो स्वीकार ही नहीं किया, तुमको हाथ पकड़ने से पहले विरोध करना चाहिए था, मैं इतना गया बीता नहीं हूँ कि जो बूढ़ा लेकर गया और मैं तुमको फिर स्वीकार कर लूँ। फिर बेचारी निराश होकर भीष्म के पास आई कि जैसे मेरे बहनों का विवाह कराए वैसे भाइयों से करा दीजिए, चाहे स्वयं कीजिए, अब मेरा हाथ पकड़े हैं, ये देखो मेरे तो करने का कोई सवाल नहीं। और जब उसकी प्रतिष्ठा है कि घूम कर आने वाली लड़की को नहीं स्वीकार किया, तो हम इतना गए बीते हैं क्या, तू गई क्यों? अब उसके कारण बड़ी भारी समस्या हो गई। तो अब सब जगह पंचायत जुटाने लगी, तो कहे कि भाई वो किसी का सुनने वाला नहीं है, क्यों आ रही हो? उसके गुरु परशुराम ही उसको समझा सकते हैं। तो परशुराम के पास गई तो कहे अच्छा तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तो करना पड़ेगा विवाह। गुरु लोग भी गुरु शिव का कभी कभी मिस यूज करने लगते हैं, वो आ गए। उनको पता था परशुराम जी को कि वो विवाह करने वाला नहीं, कहे तुमने काशी नरेश की लड़की का हाथ पकड़ा, कहा लेकिन गुरुदेव के दूसरा रीजन था, जो भी हो तुमको इसके साथ विवाह करना पड़ेगा, कहा नहीं ऐसा संभव नहीं है, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ पिताजी के समय उस समय कि नहीं मैं विवाह करूँगा, नहीं मुझे पता है लेकिन तुमने अनुचित किया इसलिए करना पड़ेगा, नहीं नहीं तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, दो में एक स्वीकार करो। तो देवव्रत कहे कि गुरुदेव आपका शिष्य हूँ, युद्ध से कतरा नहीं रहा, युद्ध अगर आपकी इच्छा है करना तो करूंगा। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि ब्रह्मा जी टेंशन में पड़ गए कि प्रलय हो जाएगा, इतने दैवी बाणों का प्रयोग होने लगा, आकाश जलने लगा दोनों गुरु चेला में, इतना भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म के कठोर बाण जब परशुराम पर लगता था, उनके छाती पर तो कहते शाबाश बेटा, प्रशंसा भी करते थे और मारते भी थे। और दोनों इतना भयंकर युद्ध करने लगे कि नारद जी को भेजे ब्रह्मा जी, जाकर रोक दो, प्रलय कर देंगे दोनों, खेल खेल में संसार नष्ट कर रोको। तो डायरेक्ट नारद जी आकर ब्रह्मा जी का आदेश सुनाए, नहीं युद्ध बंद। तो परशुराम जी खुश हो गए, कहे कि ठीक है चलो विवाह होगा या नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे संतुष्ट किया, लो ये मेरा 5 बाण स्पेशल, जिसको चाहो इसको मार सकते हो, विश्व ब्रह्मांड में कोई इस बाण से बच नहीं सकता, 5 बाण सजा कर भेजे दिए। उसको लेकर लौटे और वो तो अब उसकी कथा तो छोड़िए। तो इतना भयंकर युद्ध गुरु चेला में हुआ है और वही उसके जीवन के अंत में परशुराम आ रहे हैं, रेणुका तो आ रहे हैं, सौ शिष्यों, शिष्य लोग निंदा करते थे, आप क्यों परशुराम की प्रशंसा करते हैं, वो तो आपकी बात नहीं माना, आपसे युद्ध किया। तब जितने चेला लोग निंदा किए थे भीष्म की, उन सारे चेलाओं को आदेश किया आजा चल चलते हैं, भी कहाँ, तो भीष्म पितामह आज प्रवचन करेगा, उसका प्रवचन सुनने, हमेशा तो गुरु जी प्रवचन किया, चेला प्रवचन करेगा, चलते हैं सुनने, मतलब यह दिखाने कि हमारा शिष्य कितना महान है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान सुनने के लिए उपस्थित है। और सारे ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सभी उपस्थित हैं, सबकी भरी हुई खचाखच उस भीड़ में भीष्म सोए सोए प्रवचन किए और सब लोगों ने उसका अनुमोदन किया, भगवान के प्रति उसकी कितनी अनन्य भक्ति है यह देखने के लिए। ये लिखते हैं टीकाकार लोग, आज तुम लोगों का संदेह मिट जाना चाहिए, भीष्म कुछ बढ़कर है, स्पेशल है, और युद्ध भी किया तो उचित था, गलती मेरा ही था, परशुराम जी स्वीकार किए अपनी गलती। तो इस प्रकार सब लोग पहुंच रहे हैं वहां जहां देवव्रत गिरे हैं। तदा ते भ्रातर सर्वे सब दस्वे स्वर्ण भूषित ही अन्व गच्छन रथे विप्रा व्यास धम्य दयस्त धा। सारे भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर खूब सुंदर श्रेष्ठ घोड़ों से सजा हुआ सोने का रथ पर चढ़कर सुंदर विभूषित चल रहे थे और उनके रथ के साथ सभी लोग चल रहे थे। विप्रा हे ब्राह्मणों संबोधन कर रहे हैं सूत गोस्वामी शौनक जी को कि हे विप्रा व्यास धौम्य दयस्तदा, व्यास धौम्य आदि मुनि लोग भी उनके साथ चल रहे थे। अब हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र जा रहे हैं खूब सोने के सजे हुए रथ पर भगवान व्यास जी हैं, धौम्य मुनि हैं, उनके भाई लोग हैं। और कहे अच्छा वो लोग हैं तो कहे अभी तो छूट ही जाएगा, अधूरा हो जाएगा। भगवान अपि विप्रर से रथे न स धनंजय, सारथी भी अभी साथ है। जब कृष्ण उपस्थित हैं तो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, हालांकि वो ड्यूटी पूरा हो गया है लेकिन ड्राइवर मौजूद है तो चलो लेकर चल। अर्जुन का रथ लेकर जा रहे हैं भगवान। भगवान अपि विप्रर से हे ब्रह्मर्षियों रथे न स धनंजय, धनंजय को साथ लेकर अर्जुन को साथ लेकर भगवान जा रहे हैं। स तैव्य रोचत निप कुबेर इव गुह्य कही। महाराज युधिष्ठिर कैसे लग रहे हैं उस समाज में, जैसे देवताओं के बीच में कुबेर लगते हैं, गुह्य अपने परिकरों के साथ जैसे कुबेर लगते हैं वैसे महाराज युधिष्ठिर लग रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए कुबेर की उपमा दे रहे हैं। कृष्ण आदि सब उनके बीच चारों तरफ घेर कर चल रहे थे, महाराज युधिष्ठिर का रथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब लोग जा रहे थे बड़े राजसी ठाट बाट से और तो कुबेर से उपमा दे रहे हैं केवल संपन्नता वैभव के लिए। कुबेर जी बहुत धनी मानी हैं और युधिष्ठिर महाराज कुबेर की तरफ प्रतीत हो रहे थे। दिष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्य च्युतमिवामरं प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सह चक्रिणा। रथ गया कुरुक्षेत्र में, सभी लोग रथ से उतरे और जाकर भीष्म पितामह को देखते हैं जैसे आकाश से कोई देवता गिर गया हो, एकदम तेजस्वी पड़ा हो ऐसे। दिष्ट्वा निपतितं भूमौ, भूमि पर गिरे हुए दिव्य अच्युत विवामरम, कहते हैं ऐसे गिरे हुए हैं। यहाँ दिव्य च्युत है, अच्युत नहीं, दिव्य च्युत, आकाश से गिरे हुए अमरम इव देवताओं की तरह। प्रणेमु पांडवा भीष्मम, सारे पांडव लोग भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। सानुगा अपने अनुगों के साथ, जो भी उनके फॉलोअर हैं सब प्रणाम कर रहे हैं। पांडवों को एक साथ कहते हैं, अनुगों को एक साथ, और फिर सह चक्रीड़ा श्री कृष्ण भी प्रणाम किए। चक्रीणा माने कृष्ण, जिनके हाथ में चक्र है, चक्र होने के कारण चक्री, चक्री से चक्रीणा, जो चक्रधारी भगवान भी उनको प्रणाम किए। तो तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च तत्रासन दृष्टम द्रष्टु भरत पुंगवम। पता नहीं कौन मीडिया काम कर रही थी, सारे विश्व में पता चल गया कि भगवान युधिष्ठिर को लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। तो तत्र वहाँ ब्रह्मर्षय सर्वे, जितने ब्रह्मर्षि थे, भृगु वशिष्ठ अंगिरा पुलह क्रतु, सारे ब्रह्मा के पुत्र, और सर्वे देवर्षय, सर्वे कॉमन है, ब्रह्मर्षय देवर्षय के बीच में सर्वे है। तो सभी ब्रह्मर्षि और सभी देवर्षि, देवर्षि मतलब नारद शंकादिक नवजोगेश्वर आदि जो भी देवताओं में जो ऋषि हैं वो देवर्षि हैं, ब्राह्मणों में जो ऋषि हैं ब्रह्मर्षि हैं, राजाओं में जो ऋषि हैं वो राजर्षि हैं। तो राजर्षयश्च सभी लोग सत्तम, मतलब सभी सत्वगुणी फर्स्ट क्लास एकदम वेल एजुकेटेड लोग थे, ऐसा नहीं कि एकदम थर्ड क्लास के लोग। सत्तम, सप्तम भी सबके लिए है कॉमन। राजर्षयश्च तत्रासन, सब लोग आए क्या करने, द्रष्टुम भरत पुंगवम, उस भरत पुंगव भीष्म पितामह के लिए, जो भरत वंशियों में प्रधान हैं, उनका दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए सब लोग वहाँ उपस्थित हुए। उनको आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त है, भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उनको देखना चाहते हैं। तो कुछ महंतों का नाम रख लेते हैं। अब ऐसे सर्वे करने से काम नहीं चला, फिर स्पेशल नाम रखे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदशो भरद्वाज शशिशो रेणुका सुत वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रीतो समदोषित कक्षिवान गौतमो त्रिश्य कौशिकोथ सुदर्शन। कुछ बड़े बड़े महंत वहाँ सभी लोग जुटे थे। वहाँ मंदिर कानपुर या पूना मंदिर ओपनिंग हुआ, सारे महंत, सारे प्रेसिडेंट, सभी आचार्य, सभी गुरु लोग आए थे। बस इतना से थोड़े काम हो जाएगा। कौन कौन आए थे उनको भी नाम रखिए, थोड़ा विशिष्ट लोगों का। कहते हैं पर्वतो नारदो धौम्य, एक एक व्यक्ति का परिचय प्रभुपाद दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पर्वत मुनि कौन है और नारद जी कौन है, धौम्य कौन है, बादरायण व्यास कौन है, बृहदश्व कौन है, भरद्वाज कौन है, थोड़ा थोड़ा। स शिशो रेणुका सुत, शिशो के साथ रेणुका सुत मैंने परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, ये सब आए हुए हैं। प्रभुपाद कहते हैं पर्वत मुनि बड़े प्रसिद्ध मुनि हैं प्राचीन। नारद जी के साथ निरंतर रहते हैं, नारद जी के बड़े सगी मित्र हैं। अंतरिक्ष यात्री भी हैं, इन लोगों को विमान की जरूरत नहीं, आकाश में ही चलते हैं। पंख भी नहीं है, उनकी इतनी सिद्धि है, जहाँ मन वहाँ जाते हैं। तो इनको कोई भौतिक यान की जरूरत नहीं है। पर्वत मुनि भी नारद जी के समान चलते हैं। जब महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, सर्प यज्ञ चालू कर दिए, तो उस समय ये दोनों अचानक आ गए, नारद जी और पर्वत ऋषि एक साथ, ये रोकने के लिए। तो बृहस्पति जी भी आ गए। तो उस समय पर्वत मुनि और दोनों आए, उसका वर्णन प्रभुपाद जी कहते हैं, आकाश से विचरण करते हैं। और आकाश से ही, एक महाभारत में भी वर्णन है कि ये दोनों आए नहीं, आकाश से द्रौपदी का स्वयंवर देख रहे थे। रुक भी सकते हैं जहां मन करे वहीं, ये वर्णन करते हैं। पर्वत मुनि भी स्वर्ग से राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे, सब जगह गंधर्व के रूप में, कभी कुबेर के सुप्रसिद्ध देवताओं के राज दरबार में जाते थे, सब जगह वो जाते रहते थे। नारद और पर्वत, कई जगह वर्णन है, वहाँ क्या नाम है, मृगारी को भक्त बनने के बाद देखने के लिए पर्वत मुनि और नारद जी साथ गए थे। नारद जी कहते हैं आप तो केवल चिंतामणि या स्पर्शमणि नहीं है, स्पर्शमणि तो लोहे को लो सोना बनाता है, आप तो स्पर्शमणि पारस पत्थर, लोहा को स्पर्श करके सोना बनाता है, आप तो स्पर्शमणि बना देते हैं, उससे बढ़कर है, इसको भी पवित्र करने में समर्थ बना दिए। तो ये है पर्वत ऋषि का वर्णन नारद जी के साथ। और नारद मुनि के विषय में तो सभी जानते हैं, सुप्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र, भक्ति के आचार्य, ब्रह्मा के पुत्र और शिष्य दोनों थे। इन्हीं की शिष्य परंपरा, इन पर थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं कि हम लोग इन्हीं की परंपरा में हैं, व्यास देव के परंपरा, जो चैतन्य महाप्रभु तक यह प्रसिद्ध परंपरा है, मध्वाचार्य आदि इसी के परंपरा के हैं। ब्रह्मा, नारद, व्यास से लेकर मध्व, चैतन्य, षट गोस्वामी, ये हमारे परम्परा के आचार्य हैं। और धौम्य मुनि एक ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या किया था, पांडव राजाओं का राज पुरोहित नियुक्त किए गए थे। राज पुरोहित द्रोणाचार्य नहीं थे, वो तो शिक्षक थे, पढ़ाए थे, पुरोहित थे धौम्य मुनि। धौम्य मुनि का बहुत सुंदर, क्या कुछ कहना चाहते थे, हाँ, कृपाचार्य थे, कृपाचार्य कुल गुरु थे। गुरु पुरोहित दो दो होते हैं ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों में बावन जानना मुश्किल है। एक होते हैं पतरा पोथी देखने वाले, ये बतलाने वाले, और शुक्राचार्य और बृहस्पति जी पुरोहित और कुलगुरु दोनों थे। वशिष्ठ जी कुलगुरु थे सूर्य वंश का, तो कहने को खानदानी गाइड करने वाला, और पुरोहितों माने आगे आगे चलकर पुरोहित करने वाला, मुहूर्त नक्षत्र देखकर इस भद्रा है, यहाँ शुभ है, ये है, ये सब बताने वाले पुरोहित होते हैं। तो धौम मुनि का बड़ा सुंदर वर्णन है, जब महाराज युधिष्ठिर जीवा हार कर वनवास जा रहे हैं, तो जब वनवास के लिए निकले तो सारी हस्तिनापुर की प्रजा रोने लगी, निकलने लगी। तो महाराज युधिष्ठिर बड़ा टेंशन में पड़ गए, कैसे करें। अच्छा, जनता को तो समझा लेते, ब्राह्मण सब उनके साथ हो गए, हम भी वन में चलेंगे आपके साथ। तो महर्षि धौम में भी थे, कहे गुरुदेव क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। महर्षि धौम को बड़ा क्रोध आया, आज पूछ रहे हो, उस दिन पूछ लेता कि जुआ खेलो कि ना खेलो, आज पूछ रहे हो। बहुत सुंदर प्रवचन किया है, कह रहे देखो किसी की भी बात मानने की एक सीमा होती है। तुमको पता था कि वो अपने पुत्रों के व्यामोह में बार बार बुला रहा है जुआ खेलने के लिए, तो उसी में कह रहे हैं कि देखो पढ़ाई करने के लिए दोस्त, यात्रा के लिए, युद्ध के लिए अनेकों, भजन के लिए एक, टाइमिंग और व्यक्ति कितने कितने लोगों के साथ जाना चाहिए, उसी में कई चीज़ कितने बार में करना चाहिए, तो उसी में कहें बंटवारा एक बार होना चाहिए। जब भाई में विभेद हो गया, समझौता बांट कर समझौता नहीं होनी चाहिए, बंटवारा हो गया फिर मिला दें, ऐसे ऐसे लोगों में वैमनस्य, चोरी और अविश्वास, बहुत चीज़ बोले हैं, ये सब बढ़ता है भाइयों में। क्या उसे होता है, मन बंट गया तो फिर फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, तुमने गड़बड़ किया, बार बार मिलने के कारण इतना बैर बंधा है। आज तक वो प्रेम बना रहा था, जब एक बार में तू अलग हो गया फिर समझौता नहीं किया होता। खूब डांटे हैं, समझौता करके तुम इसको बढ़ा दिया, मन बढ़ा दिया दुर्योधन का। ठीक है, जाओ भगवान का स्मरण करो, ये ब्राह्मण लोग नहीं जाएंगे, ब्राह्मणों को भी समझाएं कि आप लोग इसको परेशान मत कीजिए, बीच बीच में मिलते रहिएगा, सबको समझाए। वहाँ महर्षि धौम का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से धौम है, और धौम में बड़े ही तपस्वी व्यक्ति थे, और सब जगह उनका नाम महाभारत में आता है, कई जगह गृहस्थों के वास्तविक पुरोहित थे, पांडवों को धर्म के सही मार्ग निर्देशक थे। पुरोहित का कार्य है गृहस्थ का आश्रम धर्म का सही मार्गदर्शन करना, प्रॉपर डिटेल लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। बद्रायन माने व्यासदेव, व्यासदेव की थोड़ी जीवनी लिखते हैं, इसके पुत्र हैं क्या हैं, सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ, और वही सत्यवती शांतनु मुनि से ब्याही गई। पहले सत्यवती एक क्या कहते हैं मलाह निषाद की पुत्री थी, और इसलिए व्यासदेव के अनेक नाम हैं, कृष्ण द्वैपायन या पराशर्ज, पराशरात्मज, ये सब अनेक नाम है। बादरायण, वेद व्यास, उनके पीछे कई कारण हैं। कृष्ण उनका वर्ण था, रंग काला था, इसलिए कृष्ण कहे गए। द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए आयन उनका था, निवास स्थान द्वीप था, गंगा जी के टापू, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया। वैदिक सूत्रों को उन्होंने व्याख्या किया, तो संस्कृत में व्यास और समास दो शब्द हैं, संक्षिप्त को समास कहते हैं, विस्तार को व्यास कहते हैं। तो वैदिक सिद्धांत की व्याख्या करने के कारण इनका नाम व्यास हुआ। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास इस तरह से प्रसिद्ध हुआ। पराशर मुनि के पुत्र होने के कारण पराशर जी हुए। पराशर मुनि का थोड़ा परिचय देते हैं कि वो त्रिकालदर्शी ज्योतिषी थे, भूत भविष्य वर्तमान बिल्कुल समझते थे। आज भी सिद्धांत ज्योतिष पढ़ने वाला जो ग्रह नक्षत्र का गणना करते हैं ज्योतिष में, हजारों वर्ष बाद में कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्योदय, कब सूर्यास्त होगा, इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। वैसा ग्रंथ लिखे हैं पराशर मुनि, बृहद पराशरी, लघु पराशरी, सब उत्तर मध्यमा शास्त्री में पढ़ना पड़ता है। संस्कृत पढ़ने के चक्कर में मैं भी पढ़ा था, वो व्याकरण में एडमिशन नहीं हुआ, साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए सिद्धांत ज्योतिष में भी, सिद्धांत ज्योतिष में एडमिशन हुआ। उसमें साइन थीटा कॉस थीटा था, ज्या को ज्या आदि, और हाइट एंड डिस्टेंस ये सब था, उसी को संस्कृत में लिखा था। इनकी भाषा केवल यही थी, साइन के जगह पर ज्या को ज्या ये सब था, ये सब पढ़ा था। तो लघु पराशरी, बृहद पराशरी, पराशर मुनि का वो सिद्धांतिक ग्रंथ आज भी फेमस है, गर्गाचार्य जी का। ये लोग त्रिकालदर्शी महात्मा थे, एकदम ज्योतिष सारा भूत भविष्य एकदम कंप्लीट जानते थे, किस क्षण में कब कहाँ क्या होने वाला है आगे, एकदम पूरा उनको दिखता था, जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है वैसे। तो ऐसे पराशर मुनि जब गंगा तट पर स्नान करने गए, ज्योति बैठी हुई थी, अचानक इनकी दृष्टि गई, ये कौन है, किसकी बेटी है, परिचय पूछते ही देख लिए उसके चेहरे को, अच्छे इसके गर्भ से भगवान का अवतार होने वाला है वैदिक शास्त्रों का, और मुहूर्त देखे तो इसी क्षण इसको गर्भधान करना चाहिए। अब कौन गृहस्थ है, कब उसका विवाह की फॉर्मेलिटी पूरा करें, कब इसको एक करें, बस समय पर विचार करके कहे कि तुमको एक गुरुतर कार्य स्वीकार करना पड़ेगा। गंगा जल उठाए और उसको फेंक छिड़क दिए, तो मत्स्यगंधा थी, मछली का गंध निकलता था, जल पड़ते ही पद्मगंधा हो गई, कमल का गंध निकलने लगा। इसके बाद कहे मैं तुमको गर्भवती करूँगा, तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास देव का अवतार होगा। एकदम घबरा गई ज्योति, ऐसा कोई साधु इस तरह की बात करता है, एकदम कांपने लगी। कहे नहीं, इस समय तुमको स्वीकार करना होगा। तो बहुत डर रही थी, लेकिन कहे नहीं तुम स्वीकार करो, और इच्छा के अनुसार तुमको गर्भ नहीं ढोना है, आज ही इसका जन्म दे सकते हो, और इसके कारण तुम कलंकिता और दूषिता नहीं होगी। स्पेशल तुमको गिफ्ट बोनस देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा सम्राट तुमको रानी के रूप में स्वीकार करेगा, तुम रानी बनोगी, एक मलाह की पुत्री रानी बनेगी, कल्पना की बात है। लेकिन पराशर मुनि ने उनको गर्भ दिया, और वो बेचारी एकदम संकोच के मारे तुरंत बच्चे को जन्म देकर टापू पर छोड़ छाड़ कर भाग गई। और वही है कृष्ण द्वैपायन व्यास, पराशर के पुत्र। और उस सुंदरी को देखकर एक बार गंगा को पत्नी बनाने वाला व्यक्ति, साधारण नहीं, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, महाराज संतनु, स्वर्ग में रहने वाली गंगा, परम पवित्रता जिनमें है, निष्कलंकिता, उसको एक बार अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए। गंगा के जाने के बाद पत्नी की आवश्यकता तो थी ही, वो मलाह की बेटी पर रिझ गए, सत्यवती पर। लेकिन उनके पिता स्वीकार नहीं किया, दासी बनाने के लिए मैं थोड़े विवाह करूँगा, हमारी बेटी से जन्मा हुआ बेटा राजा होना चाहिए, ये तो महाराज संतनु के लिए बड़ा भारी शर्त था, क्योंकि जिस बेटे के लिए गंगा को त्याग किया उस भीष्म को राजा नहीं बनाऊंगा, उस देवव्रत को राजा नहीं बनाऊंगा। अंततः देवव्रत स्वयं आगे बढ़कर पिताजी का विवाह कराया, यह कहकर कि मैं राजा नहीं बनूंगा। इतना से भी वो नहीं मान पाया निषाद, कहा कि आपका बेटा तो लड़ेगा, पर लो मैं हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। पिताजी के विवाह क्लियर हो जाए इसके लिए ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा कर ली। यही तो भगवान कहते हैं, महाभारत सीरियल में सुने हैं, हस्तिनापुर वालों को प्रतिज्ञा का बड़ा शौक है, पूरा होगा कि नहीं इस पर नहीं सोचते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा कर लेते हैं दनादन फटाफट, प्रतिज्ञा के बड़े शौकीन है। तो इस तरह से वही सत्यवती संतनु महाराज की पत्नी बनी। तो व्यास जी का ये परिचय है। बाद में व्यास जी ने सारे वैदिक ग्रंथों को लिपिबद्ध करने के लिए संकल्पित हुआ, लेकिन राइटर कौन चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया गणेश जी को कि आप लिखिए, और गणेश जी इतना जल्दी लिखते थे कि उनके बोलते ही लिख देते थे। अच्छा चलो, अब भागवत जब बोलने लगे, कहे कि एक एक श्लोक पूछूंगा, बिना समझे नहीं लिखना है, केवल टाइपर नहीं रहना है, जान कर लिखना है। तो भागवत लिखने में गणेश जी रुक रुक जाते थे, लिख कर उसका अर्थ सोचते थे, तब तक व्यास जी दूसरा बना लेते थे। तो ऐसे ग्रंथों की रचना हुई। तो ये है सत्यवती नंदन पराशर जी कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो भी आए। बृहद्दस्व आए, ये भी बड़े प्रसिद्ध मुनि हैं, महाराज युधिष्ठिर से काम्य वन में मिले थे और महाराज नल की कथा सुनाई थी, महाभारत में प्रसिद्ध कथा। और भरद्वाज सप्तर्षियों में एक है और ये अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे, गंगा के तट पर तपस्या किए प्रयाग में, सुप्रसिद्ध भरद्वाज जी का आश्रम है, देखे हैं प्रयाग में। तो ये सब परिचय है। परशुराम जी का परिचय तो मैं सबसे पहले दे दिया। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं और रेणुका के गर्भ से, बड़ा अद्भुत इनका चरित्र है। एक बार रेणुका निकट में बहने वाली नदी के पास पानी लेने के लिए गई थी और वहाँ कुछ गंधर्व लोग आकर अपना उत्सव कर रहे थे। बड़ा सुंदर देवता गंधर्व, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर था, देखने लगी और देखने के चक्कर में देर हो गया, भूल गई कि पानी लेकर जाना था। तो अब बेचारी विलम्ब करके आई और थर 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 काँप रही थी जमदग्नि मुनि के सामने। जमदग्नि मुनि कहे कि कैसे विलम्ब हो गया, बोल ही नहीं पाई। विलम्ब का कारण तो कुछ पटांग था, किसी पुरुष को देखने में विलम्ब हुआ है और वो भी अच्छा लगा है पर पुरुष, यह व्यभिचार है। आजकल में और उस समय में कितना अंतर है आप कल्पना कर सकते हैं। आजकल बदल बदल कर पुरुषों के साथ घूमने का फैशन है और एडवांस माना जाता है, और वहाँ 10-20 मिनट अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को विशेष रूप से देखना व्यभिचार था। जमदग्नि कहे अच्छा तुमको गंधर्व अच्छा लगने लगा, इस व्यभिचारिणी का सिर काट दो। पुत्रों को कहे काटो इसका सिर, बड़े पुत्र को कहे अरे बाप रे ऐसा आज्ञा हो सकता है, बेटा को ही कहे माँ का सिर काटने के लिए, उन्होंने काट दिया, ना मुझसे नहीं होगा। दूसरा तीसरा चौथा थे परशुराम, तीन पुत्र नकार दिए। परशुराम को कहे बेटा माँ को और इन बदमाश भाइयों का चारों का सिर काटो। ठीक है पिताजी, उठाए बस माँ को भी काट दिए, भाइयों को भी काट दिए। यही लक्ष्मण जी से जब बहस हुआ तो कहे तुम नहीं जानते हो मैं मुझको, मैं जानता हूँ ना, कौन नहीं जानता है कि आप माँ और भाई का सिर काटे थे। ये है परशुराम जी सिर काट दिए एकदम तुरंत। जमदग्नि जी गदगद, वाह ऐसा आज्ञाकारी की पुत्र होना चाहिए, पिता की इच्छा समझ कर कर दे, बेटा बोलो जो चाहिए मांग लो, एकदम समर्थ ऋषि आशीर्वाद देने के मूड में हो गए। वह पिताजी और कुछ देंगे या नहीं देंगे, हमारे माँ और भाइयों को जीवित कीजिए, उनको याद भी ना हो कि हमने मारा था। इनको फिर से जीवित कर दीजिए, कटा हुआ सिर रख रख करके जीवित किए और इनको याद ना हो, ऐसा ना कि जीवित होने के बाद भी बहर माने के बदमाश मुझको काटा था, ये याद नहीं रहना चाहिए। तो यही हुआ, जीवित कर दिए। तो यह परशुराम जी की कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं। और सहस्त्र बाहु अर्जुन के पुत्रों सहित सिर काटे थे, सहस्त्र बाहु समसोरिप मोरा, वहाँ बहस बांध रहे हैं जनकपुर में। तो इस तरह से परशुराम जी बड़े समर्थ, संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्रियों का वध किए और परशुराम जी ने द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। महाभारत में लड़ने वाले कई परशुराम शिष्य थे, द्रोणाचार्य परशुराम जी के शिष्य हैं और कर्ण भी परशुराम का शिष्य है। तो द्रोणाचार्य को शिक्षा दिए, कई आपस में लोग बात करते थे, भीष्म पिता में परशुराम के शिष्य हैं, द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य हैं, कर्ण, भीष्म पितामह कभी कभी कर्ण पर इतना क्रोधित होते थे, इतना क्रोधित होते थे, तुम हमारे गुरु भाई होने का कलंक तुमको झेल नहीं पाता हूँ, नीच तुम दुर्योधन को समझा नहीं सकता, परशुराम शिष्य बनकर घूम रहा, परशुराम जी यही सिखाए थे, अधर्म का पक्ष लेना। पर सबसे भीष्म पितामह को यही खलता था कि कर्ण अगर इसका साथ छोड़ दे तो ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये हमारा गुरु भाई होकर ऐसी गलती करा। परशुराम जी को ये टेंशन था। तो इस प्रकार ये परशुराम जी थे और अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए दिखाने के लिए। वशिष्ठ जी जो ब्राह्मणों में सबसे विख्यात, जिसको मुहर लगा दें वो ब्रह्मर्षि, अगर कह दें कि नहीं ब्रह्मर्षि है तो नहीं। विश्वामित्र इस चक्कर में कितना युद्ध किए ब्रह्मर्षि बनने के चक्कर में, उनके पुत्रों को भी मारे। और एक विशिष्ट घटना है कि एक दिन परशुराम विश्वामित्र मन बना लिए कि अभी डिग्री तो देगा नहीं, इसको काट ही देते हैं। तो रात में तलवार लेकर आए थे वशिष्ठ जी को मारने के लिए। और वशिष्ठ जी संयोग से चांदनी रात्रि थी, अर्ध रात्रि में कुटिया से बाहर एक शिला पर बैठकर अरुंधति के साथ अपनी पत्नी के साथ बात करे, क्या चांदनी है। और वो बेचारे छिपे हुए थे एक झाड़ी में कि सो जाएगा तब काटूंगा, एकदम अधर्म पर लग गए थे, जगने पर तो मरेगा नहीं हमसे जल्दी। तो अब तलवार लेकर एकदम तैयार थे, काटूंगा तब तक। अरुंधति कहती है, पतिदेव कितना सुंदर आज रात्रि है। कहते हाँ, रात्रि की शीतलता तो ऐसे लग रही है जैसे इस समय विश्व में विश्वामित्र का जस फैला हुआ है, वैसे चांदनी फैली हुई है। विश्वामित्र का जस फैलता, वो नलायक का नाम ले रहे हैं, मेरे पुत्रों को मारा है। कहते हैं ऐसा मत कहो, वास्तव में वो यशस्वी है, वो यशस्वी है, तेजस्वी है। तो फिर आप उसको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते हैं? कुछ कमी है इसके कारण, लेकिन उसके जस में, उसके सामर्थ्य में, उसके तेज में कोई कमी नहीं है। वशिष्ठ जी प्रशंसा, खूब प्रशंसा कर रहे हैं एकदम एकांत में अपने पत्नी से, और वो उनकी गलतियों को गिना रही है, फटाफट उसके गलती को काट रहे हैं। ऐसा तो होता ही है, मैं कौन माना, मैं भी तो युद्ध किया, मेरी भी गलती है, ये है वो है, कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे। सुनते सुनते विश्वामित्र का तो सारा क्रोध गल गया, अफसोस में हो गए कि बाप रे मैंने क्या इनके साथ व्यवहार किया, ये कितने महान हैं, परोक्ष में एकांत में अपनी पत्नी से प्रशंसा कर रहे हैं। चलो सुनाने के लिए तो कोई किसी की प्रशंसा कर देता है। बस विश्वामित्र आए और तलवार फेंके, चरणों में दंडवत प्रणाम कर गए, ब्रह्मर्षि मुझे माफ करो, मैं आपके चरणों में बहुत गलती किया, रोने लगे। विश्वामित्र चरण पकड़ लिए, तब कहते हैं वशिष्ठ जी, ब्रह्मर्षि उत्तिष्ठा, उठ जाओ, डिग्री मिल गया, बस यही कमी थी तुम्हारा, ऐठ, अहंकार ये ब्रह्मर्षि का गुण नहीं है, विनम्रता ब्रह्मर्षि का गुण है, छाती से लगा दिए। तो विश्वामित्र को भी ब्रह्मर्षि बना दिए वशिष्ठ जी। तो ये वशिष्ठ जी बहुत बड़े सूर्य वंश के गुरु हैं, सूर्य कुल के गुरु हैं, इनका इतिहास प्रमद, इन प्रमद ये सब विख्यात ऋषि थे, इनका परिचय प्रभुपाद नहीं दिए हैं, त्रित गृत समत असित आदि। तो देर हो रहा है, संक्षेप में हम आगे बढ़ते हैं। अन्य च मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मराता दयो मला शीशई रूपेता जगमु कश्यप आंगिरसादय। अन्य च मुनय, केवल मैं जिनका नाम लिया वही नहीं, और भी दूसरे लोग भी आए, और उसमें ब्रह्मराता दयो मला, ब्रह्मरात्र कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को। तो अमला इनका स्पेशल नाम रख रहे हैं, ब्रह्मरात आदय और भी अमलय, अमला पूर्ण शुद्ध है, पूर्णतया शुद्ध लोग सुखदेव गोस्वामी भी आए। और शीशे रूपेता जगमु कश्यप आंगिरस आदय, और लोग भी आए, कश्यप और आंगिरस, आंगिरस गोत्र के भी ब्राह्मण आए, कश्यप जी आए, उनके भी पुत्र परिवार सब आया। तान समेतान महाभागान अनुपलभ्य वसुतम पूजया मास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। सब लोग वहाँ उपस्थित हैं, एक से एक बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन यहाँ तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुतम, वसुओं में उत्तम ये भीष्म के लिए कहा जाता है। भीष्म पितामह सर से ही आप पढ़े हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास एक से एक बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आज किसी का स्वागत नहीं कर सकते, खड़ा होकर हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि केवल छोटे लोग उपस्थित थे, भीष्म पितामह से बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित हैं।
तो उनको प्रणाम तो करना चाहिए ना, तो किए प्रणाम, उनका स्वागत भी किए, सत्कार भी किए, शुद्ध गोस्वामी किए किए, हाँ पूजया मास, पूजा किए सबका, पूजा किए, कैसे उठपटांग बात कर रहे हैं, सर सही आप पड़े थे तो पूजा कहाँ किए, माला पहनाए, आरती किए, चंदन लगाए, चरण छुए, क्या किए, तो कहते हैं वो धर्मज्ञ थे, धर्म के रहस्य को जानते थे, इसलिए देश काल विभाग भी, देश काल परिस्थिति के अनुसार कब कैसा पूजा होता है उसको जानते थे, तो वहीं पर पड़े पड़े मन ही मन प्रणाम कर लिए। अब सर सैया पर पड़े हैं तो कैसे प्रणाम करेंगे, चारों तरफ बाढ़ लगा हुआ है, तो उस परिस्थिति के अनुसार प्रणाम किए। धर्मविद भली भांति वे जानते थे कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धर्म को सामंजस्य किया जा सकता है। जितने महान आचार्य, धर्म उपदेशक, विश्व सुधारक, सब लोग जो वहाँ उपस्थित थे, विश्व के विभिन्न भागों से तरह तरह के लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, उसे वो जानते थे। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय के उपदेशक, उपदेश करने वाले 12 महापुरुषों में एक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। अतएव ब्रह्मांड के कोने कोने से आए हुए शक्तिशाली तेजस्वी ऋषियों को पहचानते थे, उनका स्वागत सम्मान अपनी मृत्यु सैया पर पड़े पड़े कर सकते थे, और वे लोग भी सर्वज्ञ ऋषि समझ रहे थे किस पोजीशन में भीष्म है, सबको आंख पलक झुका झुका कर नमस्कार कर रहे हैं। अब हाथ तो काम नहीं कर रहा है, देख रहे हैं एक बार वशिष्ठ जी को दिखे, अत्रि मुनि को देखे, तो प्रणाम कर रहे हैं ना, एक हाथ जोड़कर प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, बारी बारी से देख कर उनके तरफ आंख बंद करना, इस तरह से प्रणाम कर रहे थे सबको। स्वागत सत्कार के लिए स्वयं उठकर शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वो न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ थे, लेकिन उनकी मस्तिष्क पूरी तरह सेवा में लगी हुई थी, सबके सम्मान कर रही थी, बोल सकते थे, बारी से बोल सकते थे, इसलिए नाम रखकर मार से दंडवत प्रणाम, विनम्र प्रणाम करते थे, आगंतुकों को ठीक से सत्कार कर पाए, समुचित काल को जानते थे। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजया मासम मायो पात विग्रहम, अपनी माया से मनुष्य का रूप धारण करने वाला श्री कृष्ण वहाँ सर्वाराध्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड उपस्थित है, उसका पूजा तो होना ही चाहिए। तो कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले, आसीनम जगदीश्वरम सारे जगत के एकमात्र ईश्वर, हृदयस्थम पूजया मासम अपने हृदय में स्थित भगवान को पूजा किए, वो जानते थे मायो पात विग्रहम, अपनी जोग माया से अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से वो विग्रह मनुष्य रूप में आए हैं, तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनकी स्थिति को समझकर सबके हृदय में भगवान हैं, इसलिए हृदय से भगवान की पूजा किए, हृदय से मन से किए गए पूजा को भगवान सबसे ज़्यादा स्वीकार किए, जान गए कि परिस्थिति में है। तो इस तरह से वे सारी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने उसी के अनुसार उनकी पूजा की मन से। तो इस प्रकार सबकी पूजा कर लिए, अब आगे प्रवचन का वर्णन होगा, कैसे इसको कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, सबका सम्मान कर लिया है।